नमस्कार भारत, आज है 9 जनवरी दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। समाजवादी पार्टी में जारी घमासान और सुलह की कोशिशों के बीच आज चुनाव आयोग से मिलेंगे मुलायम और शिवपाल, अखिलेश खेमा अपने पक्ष पर कायम।
मुख्यमंत्री जी की पार्टी के प्रति, प्रदेश के प्रति, प्रदेश के लोगों के प्रति और जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर नेताजी के नेतृत्व में पार्टी बनाई है उनके प्रति भी जिम्मेदारी।
रेहान फजल की विवेचना में सुनिएगा हिंदी के मशहूर साहित्यकार मोहन राकेश की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से।
वो कहते थे कि देखो अनीता, मैं आज तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ, पहले नंबर पे तो मेरा लेखन है, दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त हैं, तीसरे नंबर पे तुम हो।
होगी हमारी साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा है कि वो ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके भाई शिवपाल यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी चर्चाएं बेबुनियाद हैं। लखनऊ में रामगोपाल यादव ने पार्टी का जो अधिवेशन बुलाया था उसके बारे में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्हें पहले ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने इस अधिवेशन को फर्जी बताया और कहा कि रामगोपाल यादव को पार्टी का अधिवेशन बुलाने का कोई हक नहीं है। इसराइल की राजधानी यरूशलम में एक शख्स ने सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया जिससे 4 सैनिकों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। घटना के वीडियो में देखा गया कि ट्रक बस स्टॉप पर खड़े लोगों के ऊपर चढ़ गया और फिर पीछे लौटकर आया और दोबारा लोगों पर चढ़ गया। पुलिस ने ट्रक चालक पर गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि यह शख्स पूर्वी यरूशलम के अरब इलाके से था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस बात के संकेत मिले हैं कि यह शख्स खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले इस्लामी चरमपंथी समूह से प्रेरित था। देश के ऊर्जा मंत्री युवाल स्टाइन्स ने कहा, हमारे पास सबूत हैं, हमें भरोसा है कि यह व्यक्ति इस्लामिक स्टेट से प्रेरित था। हमें लगता है कि इस युवा को इस बारे में पता था कि हाल में ट्रक का इस्तेमाल कर चरमपंथियों ने बर्लिन और फ्रांस के नीस में किस तरह की तबाही मचाई है, इसीलिए उसने ये तरीका चुना। ये थे इसराइल के ऊर्जा मंत्री युवाल स्टाइन्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसंजानी का निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। सरकारी मीडिया का कहना है कि उनकी मौत राजधानी तेहरान के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से हुई। साल 1980 के बाद ईरान की राजनीति में उनको एक ताकतवर नेता के रूप में देखा जाता था। वर्तमान में रफसंजानी एक्सपीडियंसी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे थे जो संसद और देश की संवैधानिक संस्था गार्डियन काउंसिल के बीच मतभेदों को सुलझाती है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने रफसंजानी की मौत पर दुख प्रकट किया है और उन्होंने रफसंजानी को मतभेदों के बावजूद लड़ाई का एक अच्छा साथी बताया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति महम्मदू बुहारी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चिबॉक शहर से अगवा की गई बाकी 195 स्कूली छात्राओं को बचा लिया जाएगा। इन छात्राओं को अगवा हुए आज 1,000 दिन हो चुके हैं। अप्रैल 2014 में खुद को बोको हराम कहने वाले इस्लामी चरमपंथी समूह ने लगभग 200 स्कूली छात्राओं को अगवा कर लिया था। तब से आज तक 20 से अधिक लड़कियों को बचाया गया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता गारबा शेहू ने बीबीसी को बताया,
Well, at this time, I think that the government is quite pleased that we have changed the situation.
इस बार मुझे लगता है कि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि वो मौजूदा परिस्थितियों को बदल सके। जब हम आए तो इन लड़कियों के लिए कम उम्मीद बची हुई थी। हमें खुशी है कि बोको हराम के साथ लड़ाई जारी रखी गई। अभी भी हमें काफ़ी काम करना है, लेकिन हमने नाइजीरियाई सीमाओं के भीतर सभी इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। सरकार खुश है कि उन 219 लड़कियों को वापस लाने की कोशिश की गई। अभी हम सिर्फ 25 लड़कियों को बचा सके हैं। हमें उम्मीद है कि हम बाकियों को भी बचा लेंगे। ये थे राष्ट्रपति के प्रवक्ता गारबा शेहो के शब्द। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने न्यूनतम मजदूरी में 50% तक के इजाफे की घोषणा की है। बीते 12 महीनों में यह 5वीं बार है जब न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पूरे विश्व में मुद्रास्फीति की सबसे अधिक दर वेनेजुएला में है जो करीब 500% है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। समाजवादी पार्टी में जारी उठापटक और सुलह की कोशिशों के बीच आज का दिन मुलायम सिंह और सीएम अखिलेश यादव दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह और शिवपाल यादव आज चुनाव आयोग को अपने समर्थकों की सूची सौंपेंगे और ये दावा पेश करेंगे कि पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर उनका ही अधिकार है। अखिलेश खेमे की तरफ से शनिवार को ही चुनाव आयोग को समर्थक विधायकों और नेताओं की सूची सौंपी जा चुकी है। कल मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीते दिनों लखनऊ में बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक रिपोर्ट के साथ प्रभात पांडे।
मुलायम सिंह यादव की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बीते तीन दिनों से इंतजार था वो कल दिल्ली में हुई। पहले अटकलें थी कि मुलायम सिंह मीडिया से मुखातिब होंगे तो सुलह की कोशिशों का हाल बताएंगे या फिर अपने पक्ष की बात रखेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं।
रामपाल द्वारा 9 जनवरी 2017 को बुलाया गया ये सब फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और अखिलेश यादव।
लखनऊ के सम्मेलन में ही अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया था। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के गुटों के बीच की तकरार चुनाव आयोग के सामने पहुंच चुकी है। अखिलेश के समर्थक अपना पक्ष रख चुके हैं, मुलायम सिंह गुट को आज अपनी बात रखनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उधर शिवपाल यादव ने मीडिया से कहा कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ हैं और आगे भी बने रहेंगे।
जो भी हम हूं नेताजी की वजह से हूँ और हम नेताजी के साथ हैं, हर स्थिति में हर परिस्थिति में हम नेताजी के साथ हैं।
वहीं अब तक सुलह की बात कर रहे अमर सिंह ने कल मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया।
और क्या लोगे, त्याग पत्र देने के लिए तैयार है? और क्या लोगे, शिवपाल चुनाव लड़ने से हट जाने के लिए तैयार है? क्या जीते किस बात किया करे? इसलिए अपने वृद्ध पिता जिसने सब कुछ बनाया है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और जब कुछ नहीं मिल रहा है तो दोषारोपण हम पर।
मुलायम सिंह यादव गुट के नेताओं के तेवरों ने जाहिर कर दिया है कि फिलहाल सुलह के किसी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन सकी है, और लगता यही है कि शक्ति परीक्षण के कई दौर से गुजर चुके दोनों गुट चुनाव आयोग के फैसले के इंतजार में हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे प्रभात पांडे। उधर अखिलेश यादव समर्थकों ने साफ कर दिया है कि वो अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने अखिलेश यादव के करीबी पार्षद उदयवीर सिंह से बात की और उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा।
व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक परिस्थितियों में नेताजी का जो भी आदेश हो परिवार और बड़े होने के नाते वो स्वीकार है, लेकिन ये जो मामला अध्यक्ष का है ये पार्टी की जनरल बॉडी जो है जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहते हैं उसने तय किया है और उसका निर्णय पार्टी में सर्वोपरि है। इस मामले को लेके चुनाव आयोग पहले माननीय नेताजी अमर सिंह जी के सहयोग से गए और उसके बाद फिर दूसरे पक्ष से भी अपनी बात रख दी अधिवेशन में जो हुआ, तो इस पे जो भी निर्णय होगा वो चुनाव आयोग के फैसले के मार्फत होगा, पार्टी के संविधान और जो कानून है उसके हिसाब से होगा। इसमें मेरे कहने या किसी और के कहने से मुझे लगता है कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला।
लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अधिवेशन फर्जी था क्योंकि रामगोपाल यादव को अधिवेशन बुलाने का हक नहीं था।
उन्होंने जो भी कहा वो सारे पक्ष कानूनी पक्ष तो चुनाव आयोग के सामने चले ही गए हैं, और मुझे लगता है कि जो पार्टी है उसका निर्णय होता है इस बात से कि उसके सारे सक्रिय सदस्य, उसके विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि सब कहाँ खड़े होते हैं, सारे के सारे लोग किस तरफ कैसे खड़े थे, और उससे संबंधित जो साक्ष्य हैं वो चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं। मुझे लगता है कि अगर उसकी लीगैलिटी को लेके सवाल होता तो चुनाव आयोग इतने बड़े वेरिफिकेशन कराने से पहले उसकी लीगैलिटी को चैलेंज करते हुए पहले ही मना कर देता।
इस बीच में लगातार ये खबरें आ रही थी कि दोनों पक्षों के बीच में एक मेल मिलाप की कोशिश की जा रही है और वो लगातार मीटिंगों का दौर भी जारी रहा, अब क्या स्थिति है?
देखिए, नेताजी से मुख्यमंत्री जी पहले भी मिले थे, आगे भी मिलते रहेंगे, परिवार के और पार्टी के अभिभावक होने के नाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी की पार्टी के प्रति, प्रदेश के प्रति, प्रदेश के लोगों के प्रति और जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर नेताजी के नेतृत्व में पार्टी बनाई है उनके प्रति भी जिम्मेदारी। जो भी इस अधिवेशन ने फैसले लिए हैं उसको लागू करेंगे और इसमें जो भी बाधाएं आएंगी उनसे संघर्ष किया जाएगा।
ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी पार्षद उदयवीर सिंह।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
BBC हिंदी।
हिंदी की मशहूर रचनाएं आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन के लेखक के चारों ओर एक खास किस्म की रहस्यात्मकता रही है। हम बात कर रहे हैं मशहूर कहानीकार और नाटककार मोहन राकेश की, जिन्हें राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के साथ नई कहानी आंदोलन का एक प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। मोहन राकेश के एक जीवनीकार ने उनके बारे में कहा था कि वो फर्श पर गिरे पारे की एक बूंद की तरह हैं, जो कांपते और टुकड़ों में बटते हुए भी एक तरह की स्थिरता लेने की कोशिश करता है। रविवार को मोहन राकेश की 92वीं जयंती थी। उनके निजी और दाम्पत्य जीवन के कई अनछुए पहलुओं पर सुनिए आज की विवेचना रेहान फजल से।
मैं समझता हूँ लेखक की भूमिका समाज में नहीं, मतलब आज के समाज में नहीं, कल के समाज में होती है, क्योंकि लेखक समाज का अनुगामी नहीं है। वह समाज में जो कुछ घटित होता है उस सब का ही लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करता। समाज को लेकर, उसकी परिस्थितियों को लेकर उसे जो असंतोष होता है उसको व्यक्त करता है, और बहुत बार इस तरह से वह आने वाले कल का अग्रगामी होता है।
ये है आवाज़ अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन जैसी कालजयी रचनाओं के लेखक मोहन राकेश की, जिन्हें कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के साथ नई कहानी का त्रिकोण कहा जाता था। उनके सबसे करीबी दोस्त कमलेश्वर ने उनके बारे में लिखा था, मेरे दोस्त राकेश ने एक अव्यवस्थित जिंदगी जी थी, लेकिन उस अव्यवस्थित जिंदगी के अंदर भी एक गजब का अनुशासन छिपा था, एक रचनात्मक आत्मा के दिमाग का अनुशासन। ये जरूर है कि स्वभाव से मोहन राकेश बहुत फक्कर थे। जब वो अपनी पहली शादी के लिए इलाहाबाद पहुंचे थे तो उनके साथ कोई बारात नहीं थी। लगभग यही उन्होंने दूसरी शादी के वक्त भी किया, न किसी को खबर की और न ही किसी को बुलाया। दोनों ही शादियां नहीं चलीं। फिर उनकी मुलाकात अनीता औलक से हुई। दिलचस्प बात यह थी कि अनीता की मां चंद्रा मोहन राकेश की मुरीद थी। अनीता बताती हैं,
मेरी मां को बहुत पसंद थे राकेश जी, वो उनको खत लिखा करती थी। लेकिन एक ओम प्रकाश जी थे जिन्होंने राकेश जी को कहा था कि नहीं, ये चंद्रा जी नहीं, ये चंद्रा जी उनकी मां लिख रही हैं उनकी बेटी के नाम से। राकेश जी को पहले से ही पता था, क्योंकि ओम जी ने बताया था कि ये अनीता राकेश तो मैं चिट्ठी नहीं लिख रही, उसकी मां लिख रही है उसके नाम से। सारिका से जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो मेरी मां ने कहा, आपका दूसरा डाइवोर्स हो गया है, आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप हमारे पास आइए और रहिए। तब हम ग्वालियर में रहते थे, वो ग्वालियर में आए। मैं उनसे उससे पहले भी मिल चुकी थी, ये तीसरी बार मिली थी। पहली बार मिली थी जब उनके दूसरी शादी हुई थी, उसके बाद मैं उनको वेंगल्स में मिली दो बार, तीसरी बार मिली ग्वालियर में। तब तक मैं बड़ी हो गई थी, मैं 5 साल की थी जब मैंने राकेश जी का नाम सुना था। मुझे ये नहीं पता था कि यह आदमी एक दिन मेरे सामने खड़ा होगा और मुझसे कहेगा कि मेरे साथ भाग चलो। मैं भाग गई।
उस जमाने में औलक परिवार ग्वालियर में रहा करता था। मोहन राकेश मुंबई से दिल्ली जाते हुए बीच में ग्वालियर में रुके। शाम को सब लोग दिल एक मंदिर फिल्म देखने गए। मोहन राकेश और अनीता अगल बगल बैठे फिल्म देख रहे थे, तभी उनका रुमाल जमीन पर जा गिरा था।
वो रुमाल नीचे गिर गया था फिल्म हॉल में, तो वो रुमाल उठाने के लिए मेरे हाथ उनके पैरों के साथ लग गए। हम बोले तो कुछ भी नहीं, ये भी नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। जानते वो भी थे मन में और मैं भी, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे को कुछ नहीं बोले।
हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं।
मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों में से इश्क का इजहार सबसे पहले किसने किया?
प्यार का इजहार उन्होंने कभी नहीं किया। मैंने उनको एक बार कहा था कि तुम मुझसे इसलिए नहीं कह रहे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि कह देने से आदमी छोटा हो जाता है। मैंने उनको कहा, नहीं, छोटा नहीं हो जाता। अपना इजहार करने के लिए उन्होंने लहरों के राजहंस के पहले सफ़े पे लिखा, उस एक को जिसे लगता है कि मन की बात कहने से आदमी छोटा हो जाता है। इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो मुझे प्यार करते हैं।
जब अनीता ने मोहन राकेश से शादी करने की मंशा अपनी माँ से बताई तो उन्होंने उन्हें बुरी तरह से पीटा।
मेरी माँ ने तो मुझे दौरी से पीटा, कहने लगी वो तेरे से प्यार करते हैं, अरे वो तेरे के ऊपर तो थूकता भी नहीं है। फिर जब उन्होंने मम्मी से बात करी तो राकेश जी ने उस दिन साफ साफ बात कर दी कि देखिए मैं अनीता से प्यार करता हूँ। मम्मी ने मेरे ऊपर पैरा रखना शुरू कर दिया, मुझे बाहर आना जाना मना हो गया। राकेश जी ने कहा था एक दिन तुम आ जाना संडे को सुबह ट्यूटोरियल्स का कह के, एक वही कपड़े लाना जो तुमने पहने होंगे और एक अपने कुछ सर्टिफिकेट्स, और कुछ नहीं। वो दिन था, माँ ने कहा बारिश होने वाली है मत जाओ आज। मैंने कहा माँ आज ही तो जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं भीगना चाहती थी जैसे मल्लिका भीग गई थी, वो भी आषाढ़ का एक दिन था। मैं उन्हीं कपड़ों में सर्टिफिकेट्स लेके चली गई, फिर लौट के नहीं आई।
इस बीच अनीता का परिवार भी दिल्ली आ गया। अनीता ने चावड़ी बाजार के एक प्राइवेट कॉलेज में बीए में दाखिला लिया। राकेश रोज सुबह 6:45 पर टैक्सी से अनीता से मिलने उनके कॉलेज पहुंचते। राकेश उनसे शादी कर उन्हें बंबई ले जाना चाहते थे, तब शायद अनीता के बालिग होने में कुछ दिनों की देर थी। सवाल था कि कानून और परिवार की साजिशों से कैसे बचा जाए। राकेश के सबसे करीबी दोस्त कमलेश्वर अपनी आत्मकथा आधारशिलाएं में लिखते हैं।
राकेश चाहता तो सब कुछ था पर वो घबराता बहुत था। आखिर ओम प्रकाश ने एक तरकीब निकाली, अनीता राकेश के साथ खुलेआम सफर कर सके इसके लिए उसने अखबारों में एक विज्ञापन दिया। एक प्रख्यात लेखक के लिए ज़रूरत है एक ऐसी महिला सेक्रेटरी की जो युवती हो, हिंदी और अंग्रेजी की अच्छी ज्ञाता हो, जो डिक्टेशन ले सके और भारत से बाहर लेखक के साथ सफ़र कर सके। पोस्ट बॉक्स नंबर इतने पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस विज्ञापन को राकेश ने पर्स में रख लिया। अब सारी तैयारियां पूरी थीं। 8-10 दिन बाद अनीता को राकेश के साथ दिल्ली छोड़ देना था।
अनीता के मन में कहीं ये बात थी कि राकेश 2 शादियां कर चुके थे, उनके साथ उनकी निभ भी पाएगी या नहीं। मोहन राकेश ने अनीता का मन मजबूत करने की जिम्मेदारी मशहूर उपन्यासकार मन्नू भंडारी पर सौंपी। मन्नू भंडारी ने बीबीसी को बताया।
उनका कहना था कि मैं इस ढंग से बात कहूं कि अनीता स्वीकृति दे दे। अब मैं जब वहां गई तो मैं तो दंग, वो तो बहुत ही बच्ची सी, वो बहुत छोटी लड़की थी वो तो। अनीता तो मुझे पकड़ के एकदम, बताइए मनोज जी, 2 पत्नियां छोड़ी, क्या कारण था, क्यों छोड़ी? मैंने कहा वो ही कारण नहीं था, कभी भी तुमने राकेश जी के मुंह से पहली पत्नी की कभी कोई बुराई सुनी? दूसरी कद से तो साथ ही बहुत कम रहा, तो वो कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, सिर्फ इन लोगों के व्यक्तित्व बहुत अलग थे जो साथ नहीं निभा। और भाई यही कारण था, व्यक्तित्व अलग थे, वो था वो लड़के तो बच्चों की तरह से एकदम, और तो कोई कारण नहीं था, कोई बड़ा कारण तो नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तो मैं कर लूँ शादी तो कोई वो तो नहीं होगा। मैंने कहा देखो शादी का मामला ऐसा होता है, ये तो अपनी अपनी इच्छा की बात होती है, तुम कर लो बहुत अच्छा है, नहीं करो तो जो भी करो तुम तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करेगा।
जिस दिन इन दोनों को मुंबई जाना था उस दिन बारिश हो रही थी। माँ ने उन्हें घर से बाहर निकलने से मना किया, लेकिन अनीता अपनी किताबें और सारे सर्टिफिकेट्स लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकली। आगे की कहानी कमलेश्वर की जुबानी।
तय ये हुआ कि अनीता को हौज काजी से मैं लाऊंगा, राकेश मुझे गोल ढाक खाने पर इंतजार करता मिलेगा। अनीता पूड़ी वाली दुकान में अपनी किताबें पकड़े इंतजार कर रही थी, सलवार कमीज और चप्पलें पहने जैसे वो कॉलेज जा रही हूँ। गोलडाक खाने पर दूसरी टैक्सी में बैठा राकेश हमारा इंतजार कर रहा था। उसके पर्स में वो विज्ञापन वाला कागज मौजूद था और जेब में एयर टिकट। अनीता शांत थी जबकि राकेश पसीना पसीना था और बार बार सिगरेट सुलगा रहा था। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो राकेश ने कहा अभी फ्लाइट में समय है, रेस्तरा में बैठना ठीक रहेगा। मुझे तब और भी मजा आया जब अनीता भी हंसी, जब हमने देखा कि राकेश हम दोनों से अलग होकर आगे आगे चल दिए जैसे हमें पहचानते ही ना हो। मुझे भी हंसी आई जब अनीता ने कहा यही आपका जिगरी दोस्त है जिसका जिगर इतना कमजोर है।
इस तरह अनीता का वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। उनकी उम्र 21 साल की भी नहीं थी। बंबई उतरते ही मोहन राकेश अनीता को सन एंड सैंड होटल ले गए।
मैं बहुत डर गई थी, मैंने पर्दा खींचा बाहर देखने के लिए। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी, उल्टियों पे उल्टियों, उल्टियों पे उल्टी, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। मैं जा के दरवाजा खोलूं तो वो कॉकपिट का खुलता था, मुझे दिखता था बाहर। पता नहीं कैसे जा रहा, मुझे पता नहीं हवाई जहाज कैसा होता है। जब हम होटल में गए तो मुझे इतना अजीब लग रहा था कि ये लोग कहेंगे ये पता नहीं कौन आई है इसके साथ, बाल उड़े हुए। मुझे लग रहा था ये लोग सोचेंगे पता नहीं कौन से खैर लेके आए हैं कहाँ से। जब हम ऊपर पहुंचे तो मैंने पर्दा खोल कर नीचे सन एंड सैंड में देखने की कोशिश करी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो यहाँ पर्दा खोलने पे कैद कर लेते हैं, पर्दा बंद कर दो। जब पहली बार मैंने इनके साथ अकेले कमरे में मैं गई थी तो उन्होंने चिटकने लगा दी, मुझे बड़ा डर लगा अब क्या होगा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा देखो मुझे घर छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे कहने लगे तुम्हारा दिल करता है यहाँ से जाने का, सच बोलो। मैंने कहा नहीं। बम्बई तो वो मुझे लेके गए, लेकिन वहाँ हमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। हम ना अकेले मिल सकते थे, ना बात कर सकते थे, ना ही कोई हमारा रिश्ता बन सका। मुझे बात तक नहीं करते, मुझे छुआ तक नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ, शायद मैंने बहुत गलत फैसला लिया है। हमारा सेक्सुअल रिलेशन बहुत देर के बाद हुआ, क्योंकि वो आदमी जो है वो अपने दोस्तों से घेरा रहता था।
किसी भी कमसिन लड़की के लिए मोहन राकेश जैसे जटिल शख्स के साथ सामंजस्य बैठाना आसान काम नहीं था। मोहन ने भी उनसे साफ साफ कहा था कि उनकी प्राथमिकताओं में वो तीसरे नंबर पर ही आती हैं।
वो कहते थे कि देखो अनीता, वैसे वो मुझे बहुत नाम से बुलाते थे, अन्तिन मिन, तिन्ना है मेरा असली नाम, तिन्नी है। बोलने लगे देखो तिन, मैं आज तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ, पहले नंबर पे तो मेरा लेखन है, दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त हैं, तीसरे नंबर पे तुम हो। और वैसे भी देखिए ये तीन का जो हिस्सा है ना, ये मैं सारी उम्र पीछा करता रहा। 3 अगस्त के मैं, 3 दिसंबर को वो गुजरे, 3 बच्चे उनके थे, 3 बच्चे मेरे। मैंने कहा ठीक है, मैं तीसरे नंबर पे ही ठीक हूँ।
मोहन राकेश के सबसे नज़दीकी दोस्त थे कमलेश्वर। कई साल पहले वो BBC स्टूडियो आए थे और उन्होंने मुझसे अपने जिगरी दोस्त के बारे में बहुत सी बातें की थी।
हम लोग साथ साथ रहते थे 9 वर्ष, हम और मोहन राकेश एक ही घर में ऊपर नीचे, क्योंकि हम लोग दिन भर मस्ती में बातें करना, गप्पे लड़ाना, नई कहानी की बातें सोचना होता ये था कि हर वक्त जब भी कोई आए हम लोग कॉफी हाउस में बैठे होते थे। तो एक रोज किसी ने पूछा कि राकेश भाई आप का क्या दिनचर्या क्या रहती है, तो उन्होंने कहा कि बड़ा आसान है, हम रात को पहुंचते हैं कोई 11:30-12 बजे घर, तो उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर उठते हैं 11-12 बजे दिन को, सुबह की चाय आए पीते हुए 12:30-1 हो जाता है, फिर कहने लगे कि फिर क्या, फिर बस जरा सा नाश्ता किया, शेव किया, नहाए धोए, तो इसी में 4:30-5 बज जाते हैं। कहेंगे फिर, कहेंगे फिर कॉफी हाउस आ जाते हैं। तो कहेंगे तो आप लिखते कब है, उनका लिखना लिखते हम कल है।
अनीता राकेश इस समय 75 साल की है और दिल्ली में रहती है। आजकल वो अपनी किताब अंतिम सत्रें लिख रही हैं। मोहन राकेश के साथ बिताए गए एक एक क्षण को वो बहुत शिद्दत से याद करती हैं।
देखिए उनको सिगरेट पीने की बहुत बड़ी आदत थी, क्योंकि इनहेल वो नहीं करते थे, सिगरेट पीने की आदत उन्होंने मुझे भी डाली। रेखा, चमन, मदन, हम लोग सब छत पे बैठ के शराब और सिगरेट पिया करते थे। वो किसी की बदजुबानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, वो समझते थे कि वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। किसी की बदजुबानी या किसी की बात वो नहीं सुनते थे, रेजिग्नेशन अपनी जेब में रख के घूमते थे कि किसी ने कोई बात की तो रिज़ाइन करके रख दूँगा। सारिका भी उन्होंने सिर्फ जैनियों की वजह से कही है, उसकी वजह से 11 महीने कर दी तो छोड़ दी। शांति प्रसाद जी ने पूछा भैया 11 महीने तुमने सारिका चलाई अब क्यों छोड़ दी, कहने लगे शांति प्रसाद जी एक एयर कंडीशनर खरीदना था मुझे, अब मैंने पैसा इतना तो बना लिया है कि मैं एयर कंडीशनर खरीद लूँ, अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। वो तो ये पन्ना लाल और इन लोगों को, इनकी फ्लूट वगैरह ये सब सुनते थे, पुराने LPs थे उनके पास, म्यूजिक का तो उनको बहुत शौक था। और वैसे भी खयाम जैसे और ये सारे हमारे दोस्त थे, बम्बई जाते थे तो महफिलें होती थी, ये लोग घर में बैठ के गजलें सुनते थे। वो कौन औरत थी जो बंजारन थी, रेशमा को सुना करते थे, बाह बाह किया करते थे।
चार दिनों का प्यार और बाबर लंबी जुगा
अनीता के साथ रहते हुए मोहन राकेश को 6 साल हुए थे, तब उन्होंने उनसे कहा था, अब तू मेरा घर छोड़कर जाएगी या नहीं? 2 साल से ज्यादा मैं किसी औरत के साथ नहीं रहा। पहले मैंने सोचा था कि 2-3 साल बाद तुम चली जाओगी, पर अब 6-7 साल हो रहे हैं और तुम्हारे जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। यार, तूने मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया। अनीता ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, लेकिन 3 साल बाद राकेश उन्हें छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। सिर्फ 46 साल की उम्र में सिर्फ 9 साल का साथ रहा इन दोनों का। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
आज की विवेचना के बारे में लिखिएगा अपनी राय, और हफ्ते भर की खेल की दुनिया में क्या हलचल रही और आगे किन खेल प्रतियोगिताओं पर रहेगी नजर, आइए जानते हैं खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा, लिहाजा अभी खिलाड़ियों के पास अपने आप को तरोताजा करने का समय है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने कल बांग्लादेश को बे ओवल में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 47 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 197 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वह 18.1 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के सब्बीर रहमान ने 48 और सौम्य सरकार ने 39 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने कोलिन मुनरो की 101 रनों की शतकीय पारी की मदद से 7 विकेट खोकर 195 रन बनाए। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। इसी बीच ICC टेस्ट रैंकिंग में जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम 120 अंकों के साथ अभी भी नंबर 1 बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का नुकसान भुगतना पड़ा और वो अब 5वें पायदान पर पहुंच गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका 102 अंकों के साथ तीसरे और इंग्लैंड 101 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। टेनिस के कोर्ट पर इस सप्ताह दुनिया भर के टेनिस जगत के जगमगाते सितारे विभिन्न टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाते रहे, और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ब्रिटेन के एंडी मरे को मात देकर कतर ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में दूसरी वरीयता हासिल जोकोविच ने शीर्ष वरीयता हासिल एंडी मरे को 6-3, 5-7, 6-4 से हराया। इस खिताबी जीत के साथ ही जोकोविच ने दिखा दिया कि इस साल उनकी चुनौती को कम ना कहा जाए। कतर ओपन में पुरुष युगल वर्ग का खिताब फ्रांस के जेरेमी चार्डी और फैब्रिसे मार्टिन की जोड़ी ने जीता। फाइनल में उन्होंने कनाडा के वासिक पॉस्पिसिल और चेक गणराज्य के रोडेक स्टेपनेक को 6-4, 7-6 से हराया। उधर ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब 7वीं वरीयता हासिल बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने जीता। फाइनल में उन्होंने 3री वरीयता हासिल जापान के केई निशिकोरी को 6-2, 2-6, 6-3 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में एक प्रेसवार्ता में कहा है कि वो ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसराइल की राजधानी यरूशलम में एक शख्स ने सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे 4 सैनिकों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसंजानी का निधन हो गया है, वो 82 साल के थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति महमदू बुहारी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चिबॉक शहर से अगवा की गई बाकी 195 स्कूली छात्राओं को बचा लिया जाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने न्यूनतम मजदूरी में 50% तक के इजाफे की घोषणा की है। बीते 12 महीनों में यह 5वीं बार है जब न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ मुख्य सलाहकारों से मुलाकात की है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया दीपक जसरोटिया ने, तो अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।